ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लोगों को अनेक विकास परियोजनाएं समर्पित की। उन्होंने यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी। इस इकाई को 8469 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा।
विकसित भारत के निर्माण में बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और हमारी सरकार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चौतरफा काम कर रही है। चाहे वन नेशन वन ग्रिड हो, नए कोल पावर प्लांट हो, सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर सेक्टर का विस्तार हो, हमारा प्रयास है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े।
प्रधानमंत्री ने यमुनानगर में 90 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गोबर धन संयंत्र की आधारशिला रखी तथा रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। रेवाड़ी बाईपास परियोजना को भारतमाला योजना के तहत हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर 1069 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कृष्णलाल पंवार और श्याम सिंह राणा भी मौजूद थे। इससे पहले कल सुबह प्रधानमंत्री ने हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की आधारशिला रखी तथा हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने वक्फ संशोधन में किए गए परिवर्तनों का समर्थन करते हुए कहा कि इनसे गरीब मुस्लिमों को लाभ होगा और जनजातीय भूमि को संरक्षण मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वक्फ संशोधन अधिनियम पर उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुश्री बनर्जी का पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम को लागू न किए जाने वाला बयान संविधान के विरूद्व है। श्री त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर हाल ही में संसद द्वारा पारित अधिनियम को लेकर तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने मुर्शिदाबाद में हुई घटनाओं पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। राज्यपाल को लिखे पत्र में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष डॉ. सुकांत मजुमदार ने घटनाक्रम का विस्तृत ब्यौरा देते हुए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने लिखा है कि यह घटना केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि मानवीय संकट का मुद्दा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थिति से प्रभावित निर्दोष हिंदुओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए राज्यपाल को बिना देरी के कदम उठाने की आवश्यकता है। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल की दूसरी मंजिल पर कल रात भीषण आग लग गई, जिससे मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। घटना के बाद उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख अय्यर अस्पताल पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 200 मरीज को दूसरे अस्पताल में भेजा गया है। गंभीर मरीजों को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU भेजा गया है, जबकि कुछ मरीजों को सिविल अस्पताल ले जाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तटरक्षक बल ने गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मिलकर 1800 करोड़ रुपए मूल्य की 300 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर तटरक्षक बल ने विशेष अभियान के दौरान गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास एक जहाज को रोका। जहाज में सवार संदिग्ध तुरंत ही मादक पदार्थों को समुद्र में फेंक कर भाग गए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ उसकी बातचीत का दूसरा दौर शनिवार को रोम में होने की संभावना है। इटली के विदेश मंत्री अंतोनियो ताजानी ने घोषणा की कि दोनों पक्षों और ओमान के आग्रह के बाद इटली बातचीत की मेजबानी पर तैयार हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराकर लगातार 5 मैचों में अपनी हार का सिलसिला खत्म कर दिया। 167 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 ओवर और 3 गेंद में जीत का लक्ष्य हासिल किया। आज चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।